ओम ज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरवे नमः श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपा कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं हे कृष्ण करुणा सिन्धो दीनबन्धो जगत्पते गोपेश गोपिका कान्ता राधाकान्त नमस्तुते तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरि प्रिये वांछाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिंधुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः जय श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासदि गौर भक्त वृंद हरे कृष्णा 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्णा। मेरी आवाज सुनाई दे रही पीछे तक? हाय ना, तो श्रील प्रभुपाद हमें सिखाते हैं भगवद गीता में, प्रभुपाद कहते हैं कि भगवान ने भगवद गीता में अपने नाम, अपने रूप, अपने गुण और अपने लीलाओं के बारे में संक्षिप्त रूप से वर्णन किया है। और विशेष रूप से भगवान 15वें अध्याय में वर्णन करते हैं, अपने धाम के बारे में वर्णन करते हैं। और वर्णन करते हुए कृष्ण क्या कहते हैं? मद धाम परमम मम न तद भासयते सूर्यो न शशांको न पावकः, कि मेरा ऐसा जो परम धाम है जहाँ इस भौतिक जगत में हमें प्रकाश प्राप्त करने के लिए चंद्रमा और सूर्य या रोशनी चाहिए, बिजली आदि, लेकिन भगवान कहते कि मेरा जो नित्य धाम है वहाँ इन सब चीजों की आवश्यकता नहीं है। वो क्या है? भगवान से ही अंग कांति से प्रकाशमान है। तो ऐसा ये जो धाम है वो भगवान को बहुत अधिक प्रिय है। और इसी कारण से भगवान क्या करते हैं, जब इस संसार में अवतरित होते हैं तो वो अकेले अवतरित नहीं होते हैं। जब भगवान को आना होता है तो भगवान सबसे पहले अपने धाम को भेजते हैं। किसको भेजते हैं? धाम को भेजते हैं। हाँ, इस जगत में भी सर्वसाधारण अमेरिका का राष्ट्रपति या जो प्रेसिडेंट है उसको किसी देश में जाना हो तो भी वो अपने सारा साथ सामान लेकर अपने साथ चलता है, तो भगवान क्यों नहीं। तो इस प्रकार से भगवान इस जगत में अवतरित होने से पूर्व अपने धाम को भेजते हैं। और वो भगवान का प्रिय धाम कौन सा है? वृंदावन। तो आप शायद बहुत बार वृंदावन में आए होंगे, लेकिन वास्तव में वृंदावन जब हम आते हैं तो वृंदावन में प्रवेश करने के लिए योग्यता की आवश्यकता है, क्योंकि वृंदावन हमारे भौतिक आंखों के द्वारा बोधगम्य नहीं है, या भौतिक आंखों के द्वारा इस वृंदावन का जो मूल स्वरूप है उसको हम नहीं देख सकते। सर्वसाधारण लोग जब वृंदावन आते हैं तो जाते ही वो कंप्लेंट करने लगते हैं, या यहाँ आते तो क्या दिखाई देता है वृंदावन में उनको? बहुत अव्यवस्था दिखाई देती है, गंदगी दिखाई देती है, सुवर दिखाई देते हैं और ट्रैफिक और बहुत कुछ चीजें दिखाई देते हैं। तो लोग सोचते हैं कि अगली बार वृंदावन नहीं जाना है, लेकिन शास्त्रों में पढ़ते कि वृंदावन तो जहाँ निरंतर झरने बह रहे हैं, कमल खिले हुए हैं, सरोवर सुगंधित जल से भरे पड़े हैं और मयूर है, अनेक अनेक प्रकार के पंछी हैं जिनकी मधुर ध्वनि सुनाई देती है, ऐसा हम श्रीमद् भागवतम में और कई ग्रंथों में पढ़ते हैं। लेकिन जब स्वयं आते तो देखते कि ये सारी चीजें नजर नहीं आती। किस चीज की आवाज आती है हमें? गाड़ियों के हॉर्न्स हैं, कुछ लोग मांगने वालों की आवाजें आती हैं, तो हम बड़े कंफ्यूज्ड हो जाते हैं। ऐसे जब श्रील प्रभुपाद अमेरिका गए थे तो उन्होंने जब पहले प्रचार किया और प्रभुपाद ने कहा जो वृंदावन भगवान का धाम है वो इस संसारिक जगत का भाग नहीं है, वो मथुरा जिले का भाग नहीं है या भारत का भाग नहीं है, इस ब्रह्मांड का भाग नहीं है, पृथ्वी का भाग नहीं है, वो अपने आप में एक अलग उसका अस्तित्व है। हाँ, जब ये सब चीजें प्रभुपाद बता रहे थे भगवान के धाम का वर्णन, जहां साक्षात परम ब्रह्म कृष्ण निवास करते हैं और इतना सुंदर आदि है, तो सारे जो प्रभुपाद से जुड़े हुए 1966 में या उसके आसपास जो भी वो भक्त थे, उन सबको एक ही इच्छा थी कि कब मैं वृंदावन जाऊंगा, कब मैं वृंदावन जाऊंगा। तो उसमें से कई सारे प्रभुपाद के साथ पहली बार आए और एयरपोर्ट में उतरे। कौन से एयरपोर्ट में उतरे होंगे? दिल्ली एयरपोर्ट। दिल्ली में उतरे और प्रभुपाद के साथ टैक्सी में बैठ के जा रहे थे, तो जैसे लगता है किसी चीज को देखने के लिए हम बड़े ईगर होते हैं, जिसके बारे में बहुत सुना हो लेकिन कभी देखा ना हो, तो हमें लगता है कि कब जाऊंगा, कब देखूंगा, कब अनुभव करूंगा। तो ऐसे ये जो प्रभुपाद के साथ भक्त आए थे, तो उनको लगा कि बस अभी थोड़े दूर बचा है। जब वो छठी करा आ गए तो लगा कि अभी हम ऐसी जगह घुसने वाले हैं जहां क्या है, कमल ही कमल है, सरोवर है और मोर आदि है, बहुत सारी चीजों का उन्होंने सुना था। तो जैसे प्रवेश किया और यहाँ आकर देखा, यहाँ बिजली भी नहीं चलती, यहाँ कुछ स्थान रहने योग्य भी नहीं है। प्रभुपाद जब आए थे शुरुआत में, उस समय तो कोई गेस्ट हाउस नहीं थे, ये केवल छोटा सा वृंदावन भाग था। तो ये सब चीजें अव्यवस्था देखी, उसमें से एक ने तो मथुरा से रात को ही वापस चला गया, उसने कहा मुझे यहाँ नहीं रहना है। और इस प्रकार से हमारा जो देखने की भावना है वो भौतिक है। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में कहते हैं, चिंतामणि भूमि कल्प वृक्षमय वन चर्म चक्षे देखे तार प्रपंचेर सम। मतलब ये जो भूमि है वो चिंतामणि से बनी है। आजकल सबको चिंता लगी हुई है, किसकी चिंता है? मनी की, 500 के नोट और 1000 के नोट। जहां मर्जी जाओ आप, किसी के साथ बात करो, केवल एक ही चर्चा का विषय है। तो इस प्रकार से ये जो चिंता मणि का बना हुआ ये भूमि है, चिंता मणि मीन्स पारस पत्थर, जिसका स्पर्श लोहे को करने मात्र से क्या होता है, वो सोना बन जाता है, टच स्टोन प्रभुपाद कहते थे। तो इस प्रकार से ये जो भूमि है अत्यंत दिव्य है, लेकिन कृष्णदास कविराज कहते हैं चमड़ी के आंखों से देखने का प्रयास मत करो, आपको देखना होगा कैसे, प्रेमांजन छुरित भक्ति विलोचने न संता सदैव हृदयेषु विलोकयन्ति यम श्याम सुंदरम अचिंत्य गुण स्वरूपम गोविंदमादि पुरुषम तमहम भजामि। तो वह ब्रह्मा कहते हैं इस धाम को यदि किसी को देखना है, अनुभव करना है, तो उस व्यक्ति को अपने आंखों में क्या लगाना होगा, प्रेम का अंजन लगाना होगा, क्योंकि इस हृदय में काम है इतना अधिक, भौतिक भोग करने की भावना जितनी अधिक होगी उतना ही ये धाम हमें कभी भी प्रकट नहीं होगा। जितना अधिक हमारे हृदय में भगवान के प्रति प्रेममय सेवा करने की भावना होगी, उतना ही धाम ये हमें क्या होगा, प्रकाशमान होगा, हमारे लिए मैनिफेस्ट हो जाएगा, प्रकट हो जाएगा। तो इसलिए चैतन्य चरितामृत में कृष्णदास कविराज कहते हैं कि इस धाम को देखने की जो योग्यता है वो हमें अर्जन करनी चाहिए भक्तों के माध्यम से, आध्यात्मिक गुरु के माध्यम से। तो ऐसा ये जो वृंदावन धाम है, यहाँ आना ही अपने आप में बहुत बड़ा लाभ है। वृंदावन की महिमा में वर्णन आता है कि कोई व्यक्ति केवल ये डिजायर करता है कि मुझे वृंदावन जाना है, उसके अनंत करोड़ों करोड़ जो पाप राशि है वो खत्म हो जाती है। या कोई व्यक्ति वृंदावन आकर केवल लेटता भी है, सो भी जाता है, तो वो भगवान को दंडवत कर रहा है। क्या कर रहा है? दंडवत मार रहा है। तो इतना अधिक ये महत्वपूर्ण धाम है। बल्कि रूप गोस्वामी कहते हैं कि हरे कृष्णा कहना और वृंदावन ये शब्द उच्चारण करना दोनों क्या है, सेम है। भगवान के नामों का उच्चारण करके जो लाभ प्राप्त होता है वो लाभ व्यक्ति को प्राप्त हो सकता है यदि वो क्या बोलता है, वृंदावन। तो इतना ये महत्वपूर्ण धाम है भगवान का, जहां साक्षात भगवान कृष्ण क्या करते हैं, निवास करते हैं। क्योंकि तीर्थ अलग है और धाम अलग है। तीर्थों में आप जाते हो हरिद्वार जाते हैं ना, लोग अलग अलग तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जाते हैं। जहां जल राशि होती है, जिसमें जाकर व्यक्ति स्नान करता है, कुछ दान पुण्य करके वापस आता है, अपने पाप वहां छोड़ता है, पाप धोता है, वो जो तीर्थ है। लेकिन पाप करने की जो प्रवृत्ति व्यक्ति के हृदय में है वो कभी जाती नहीं है। कितनी भी बार तीर्थों में जाओ, स्नान करो, पाप करने की प्रवृत्ति हमारे हृदय से कभी भी नहीं जाती। लेकिन जो धाम है भगवान का, वह क्या है विशेषता कि यहाँ आने मात्र से पाप तो वैसे ही उसके स्मरण मात्र से चले जाते हैं, लेकिन व्यक्ति के हृदय में जो पाप करने की प्रवृत्ति है वो भी नष्ट हो जाती है। इसलिए भगवान को अपना ये जो धाम बहुत अधिक प्रिय है। प्रभुपाद को पूछा कि ये धाम का मतलब क्या है, तो प्रभुपाद कहते कि जहां भगवान कृष्ण इस पृथ्वी में जहां पहली बार स्पर्श करते, जिस स्थान में, या जहां अपना नाम रूप गुण लीला इन चार चीजों को जहां प्रकट करते हैं, उस स्थान को क्या कहा गया है, धाम कहा गया है। तो धाम कई है, एक है साक्षात ब्रजभूमि वृंदावन, जहां भगवान ने अपने नाम रूप गुण लीला को प्रकट किया, और दूसरा धाम कौन सा है, कौन सा है, भगवान के भक्त का हृदय। क्योंकि भगवान के भक्त के हृदय में 24 घंटे उनके नाम, उनके रूप, उनके गुण और उनकी लीलाएं क्या होती हैं, प्रकट होती रहती हैं। इसलिए भगवान के भक्त का जो हृदय है वो भी धाम है, और ये धाम भी अपने आप में डायरेक्ट धाम है। और तीसरी चीज आचार्य गण कहते हैं कि जहां भी भगवान के ये चार चीजों का उच्चारण होता है, चाहे किसी भी विश्व में किसी भी कोने में क्यों ना हो, जहां नाम का उच्चारण हो रहा हो, रूप गुण और लीला इन चार चीजों का जहां उच्च वर्णन आदि होता है, वो स्थान भी धाम से अभिन्न माना जाता है। इसलिए श्रील प्रभुपाद जब अपने मंदिरों के बारे में चर्चा करते थे तो प्रभुपाद ने क्या कहा, मेरे मंदिर क्या है, वैकुंठ है। क्या बोला प्रभुपाद ने, वैकुंठ है। तो वैकुंठ से अभिन्न है, क्यों, क्योंकि वहां ये चार चीजें होती हैं। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि धाम का व्यक्ति को आश्रय लेना चाहिए। क्यों वृंदावन आना चाहिए, अधिकतर लोग आते कि चलो वृंदावन चलते हैं, बाकी बिहारी लाल की जय, बाकी बिहारी के अलावा किसी को कुछ पता नहीं है, और बाकी बिहारी का अर्थ किसी को पूछो, अरे बाकी बिहारी का मतलब क्या है, तो पता नहीं अधिकतर लोगों को पता है या नहीं है। बाकी मीन्स क्या, टेढ़ा। तो जो बिहारी, बिहारी मीन्स वो बिहार वाले बिहारी नहीं, बिहारी मीन्स जो ब्रज के 12 वनों में विहार करते हैं, विचरण करते हैं, गमन करते हैं। हाँ, तो ऐसे जो भगवान कृष्ण है सदैव त्रिभंग ललित रूप में खड़े रहते हैं और ब्रज के वनों में भ्रमण करते हैं, वो वास्तव में बाकी बिहारी है। तो ऐसे लोग वृंदावन तो आते हैं, लेकिन वृंदावन आके क्या करना चाहिए व्यक्ति को, आप सबको प्रश्न है, बोलिए, अलग अलग लोग बोल सकते हैं, वृंदावन आके क्या करना चाहिए, हाँ, श्रवण करना चाहिए, और कोई बोल सकता है, जप करना चाहिए,
भगवान के मंदिर में दर्शन,
मंदिरों में घूमते रहो, और साधुओं से मिलना चाहिए, और कोई डिवोटी के संग में बैठ के कृष्ण कथा और प्रसाद पाना चाहिए, और भगवान के दिव्य लीलाओं का स्मरण करना चाहिए। तो ये सारे जो चीजें सही हैं, सबसे महत्वपूर्ण क्या है, श्रीमद् भागवतम में युधिष्ठिर महाराज कहते हैं, क्योंकि आप जानते हैं महाभारत का युद्ध जब शुरू हुआ तो एक व्यक्ति ने उसमें भाग नहीं लिया, दो लोगों ने, बलराम जी भी चले गए और दूसरे विदुर भी, कहां गए थे, तीर्थ भ्रमण करने के लिए। तो विदुर जब सारे तीर्थों का भ्रमण करके वापस आ गए, और वापस आकर विदुर जब आए हस्तिनापुर में या इंद्रप्रस्थ में जहां भी, तो युधिष्ठिर महाराज कुंती आदि उनका स्वागत करने के लिए बाहर आ गए, घर के बाहर, और उनको देखते ही युधिष्ठिर महाराज ने कहा कि तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृतः। उन्होंने कहा कि अरे महाराज विदुर, आपको तीर्थों का भ्रमण करने की कोई आवश्यकता नहीं है। जो व्यक्ति संसारिक कर्मों में फंसा हुआ है वो व्यक्ति तीर्थों का भ्रमण करने के लिए जाता है, और वो इसलिए जाता है कि वो शुद्ध होना चाहता है। लेकिन जो महान भगवान के भक्त हैं, साधुगण हैं, वो तीर्थों का भ्रमण इसलिए करते हैं कि दो चीजों के लिए। दो चीजें क्या हैं? एक है उन तीर्थों को जाकर वो पवित्र करते हैं। साधुओं में क्या गुण होता है? वो तीर्थों को भी पवित्र करने का सामर्थ्य उनके अंदर है। और दूसरा है, जो लोग शुद्ध होने की भावना से तीर्थों में आते हैं, उनको क्या करते हैं? अपने संग के माध्यम से उनको शुद्ध करते हैं। इसलिए वो कहते हैं, तीर्थी कुर्वन्ति तीर्थानि स्वान्तस्तेन गदावृतः। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, वो पूरे संसार में विचरण करते हैं अपनी शुद्धि के लिए नहीं, उन तीर्थों की शुद्धि और लोगों की शुद्धि के लिए। तो इतने शक्तिशाली होते हैं कि उनके हृदय में भगवान साक्षात निवास करते हैं, तो हम दर्शन कर सकते हैं। अभी बेल तो बज रहा है, सुन तो नहीं पाएंगे, तो आप सब दर्शन कर लीजिए, फिर हम यहाँ बैठेंगे कुछ समय के लिए। तो ये विशेष विग्रह हैं, ऊपर आप पढ़ सकते हैं, नाम दिए हैं अलग अलग विग्रहों के। तब तक आप खोल दो सारा।
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो हम कहां थे, किसी को याद है? क्या क्या करना चाहिए? तो जनरली लोग आते हैं, बाकी बिहारी हम अधिकतर जाते हैं, लेकिन जो वास्तविक वृंदावन है उससे वो कभी अवगत नहीं होते हैं। और वृंदावन आना, हम इस दर्शन करना ही काफी नहीं है, या आके लस्सी और गोलगप्पे खाना ही काफी नहीं है, वृंदावन उससे परे है। हाँ, तो इसलिए सबसे महत्वपूर्ण है, वृंदावन आते हैं तो क्या करना? साधु संग, साधु संग सर्व शास्त्र क्रय लव मात्र साधु संग सर्व सिद्धि है। कि वृंदावन आते हैं तो अधिक से अधिक हमें प्रयास करना चाहिए भगवान के भक्तों का संग करें, और उनके संगति में भगवान के नाम रूप गुण उनके लीलाओं का श्रवण और उसका कीर्तन करना चाहिए। तभी वास्तव में वृंदावन को हम अपने हृदय में धारण करके वापस ले जा सकते हैं। वृंदावन आना में साथ में किसको ले जाना? कृष्ण को ले जाना। किसको ले जाना? आपको याद है, दो लोग धाम की यात्रा में निकल पड़े थे दिल्ली से। कौन थे वो दो लोग? अर्जुन और दुर्योधन। कौन से धाम की यात्रा में गए थे? द्वारका, महाभारत के युद्ध के पूर्व। वो भी हमारे देश से ही यात्रा में निकले थे। तो ये जो दोनों जाते हैं और भगवान के पास पहुंचते हैं, तो उस स्टोरी को आप सबने सुना है। तो भगवान तो विश्राम कर रहे थे, और वहां जाते ही दुर्योधन जाकर कहां बैठता है? भगवान के सिर पे। कुछ लोग तंग करने वाले लोग होते हैं ना, कहते आजकल मेरे सर में बैठा है, परेशान कर रहा है। तो वैसे ये दुर्योधन जाकर भगवान के शरण के पास बैठता है, और अर्जुन अपना कौन सा स्थान चूज करता है बैठने का? शरण। क्योंकि भागवतम कहता है सारंगाना पदांगुजम, प्रथम स्कंद में वर्णन आता है, सारंग में डिवोटीज, भगवान के भक्त। तो ऐसे जो भगवान के भक्त हैं, वो भगवान के चरण कमल ही उनका सर्वस्व है। इसलिए चैतन्य महाप्रभु क्या कहते हैं, आई नंद तनुज किंकरं पतितं मां विषमे भवामुदो, कि मैं हे नंद तनुज कृष्णा इस भौतिक संसार के सागर में गिर पड़ा हूं, आप मुझे क्या करो, उठा लो और आपके चरण कमल का धूलि का कण बना लो। मुझे कहां स्थान चाहिए, चरण कमलों में स्थान चाहिए। और वही वास्तविक भावना है दास दासानुदास। तो इस प्रकार से अर्जुन जाकर बैठते हैं और भगवान जो सर्वप्रथम उठते हैं तो किसको देखा होगा भगवान ने सर्वप्रथम, अर्जुन को। आप कभी साउथ इंडिया जाओ टेम्पल्स में, जब भी भगवान वहां उठते हैं सुबह तो सबसे पहले भक्तों को देखना चाहते हैं। किसको देखना चाहते हैं, आप सब अनुभव है, आप सबसे पहले उठते किसको देखते हो घर में, सोचो आज आप उठे और सबसे पहले क्या देखा, मोबाइल देखा होगा सबने, नहीं व्हाट्सएप पे कितने मैसेजेस हैं। जनरली उठते हमें प्रणाम करना चाहिए और कृष्णाय प्रभुपाद अध्यात्मिक गुरु का फोटोज हो उनको हम सर्वप्रथम देखें। तो यहाँ क्योंकि भगवान कभी अवक्त को देखकर आनंदित नहीं होते, उठते उन्होंने अर्जुन को देखा और उन्होंने कहा अरे अर्जुन आप हाँ कब और क्यों आए यहाँ, दुर्योधन कहते हैं मैं भी यहाँ हूँ, इधर को देखो द्वारकाधीश। तो कृष्ण वहां देखते और पूछते कारण बताइए, तो दोनों बताते हैं हम सुने हैं कि हम तो युद्ध करने जा रहे हैं तो आपकी सहायता चाहिए। तो भगवान ने क्या कहा, मेरे पास दो चीजें हैं, कौन सी दो चीजें, एक मैं हूं और एक मेरी सेना है, मैं और मेरा। हाँ तो फिर अर्जुन क्या चूज करता है, सबसे पहले तो दुर्योधन मांगता है, दुर्योधन कहते तो कृष्ण है ग्वाले हैं किसी काम के नहीं मेरे, मुझे क्या चाहिए इनकी नारायणी सेना चाहिए। और अर्जुन की बात आती है अर्जुन कहते हैं मुझे कोई सेना वेना नहीं चाहिए, मुझे तो केवल कृष्ण आप चाहिए। भगवान कहते मैं लड़ने वाला नहीं हूं, आप लड़ो मत कुछ भी मत करो, आप मेरे पार्टी में होने चाहिए। तो वैसे ही दोनों यात्रा खत्म करके कहां पहुंचते वापस, दिल्ली पहुंचते हैं। हाँ तो वैसे ही हम भी जब यात्रा से वापस जाएंगे तो हमने दोनों में से एक को चूज करना होगा, या कृष्ण चाहिए या कृष्ण की शक्ति चाहिए। सारे लोग मंदिरों में जाते हैं दर्शन करते हैं और कभी कोई इनवाइट नहीं करता कि भगवान आप मेरे घर आओ, भगवान तुम्हारी शक्ति मुझे चाहिए, धन चाहिए, समस्या का समाधान करो, ये सब चीजें मुझे चाहिए। लेकिन कृष्ण को कभी बुलाते हम, कहते राधा पार्षद उधर ही ठीक हो, आठ बार भोग लगाना पड़ेगा, ड्रेसिंग करना पड़ेगा, मंगल आरती कौन करेगा, इतना सारा कौन उठेगा सुबह। हम सोचते नहीं, हाँ तो हमारे अंदर वास्तव में यदि डीप इनसाइड हृदय में जाएंगे तो अर्जुन की भावना नहीं है, अधिकतर भावना किसकी है, दुर्योधन की भावना हमारे हृदय में है। हम नारायणी सेना इकट्ठा करना चाहते हैं लेकिन अर्जुन करते मुझे नहीं, मुझे कृष्ण चाहिए। तो वैसे ही यात्रा का जो परम फल है वो कृष्ण को वापस ले जाना। हम लोग दर्शन करना शुरू करते हैं कि नहीं करते, पहले कैमरा से फोटो लेना शुरू करते हैं। हाँ वो दीनबंधु प्रभु प्रभुपाद के शिष्य हैं, मैं भी कुछ दिनों तक उनके साथ ही जा रहा था ब्रज में अलग अलग लीला स्थलों में। तो वो कहते हैं कि नहीं, हाँ वो कहते हैं कि आपको कृष्ण को कैच करना है तो कौन से कैमरे में कैच करो, हृदय के कैमरे में कैच करो। आप देखो मंदिर से आप यहाँ आए हो, याद करो कितने डिटीज है, कौन से हैं, क्या वस्त्र उन्होंने पहले, गार्लेंट्स कैसे हैं, उनका तिलक आदि कैसे है, कौन सी मुद्रा में खड़े हैं, हाँ ये सब चीजें पूछे तो पहले देखेंगे कौन से फोटो में क्या है तब बताऊंगा। तो इस प्रकार से हमें कृष्ण को वापस ले जाना अपने साथ, मीन्स कृष्ण के नाम, कृष्ण के रूप, कृष्ण के गुण, कृष्ण के लीला, इनमें डूबने के लिए प्रेरणा इंस्पिरेशन लेके वापस जाना है, इमिटेशन नहीं। हाँ तो इस प्रकार से वृंदावन आने का मतलब है कि कृष्ण को अपने साथ ले जाना। तो कृष्ण साथ जाएंगे जब हम भगवान के भक्तों का क्या करते हैं, संग करते हैं और अधिक से अधिक धाम में भगवान का नाम रूप गुण लीला आदि का श्रवण कीर्तन करते हैं। तो इस प्रकार से तभी हमारा जो धाम में आने का जो लाभ है वो पूर्ण रूपे में हम प्राप्त करते हैं, नहीं तो हम और टूरिस्ट की बात ही आते हैं। टूरिस्ट आते हैं ना, आई एक्सरसाइज करते हैं, फोटो खींचते, सेल्फी निकालते हैं, चले जाते हैं और कहते हैं कि मैं यहाँ यहाँ गया था। हाँ, तो वो लाभ नहीं है। तो असली लाभ है कि हम जाकर भक्तों के संगति में भगवान का श्रवण कीर्तन जितना अधिक हो सके वो करें और ना एक दूसरे की सेवा करने का प्रयास करें जब धाम में आते हैं। तो इस प्रकार से वृंदावन आना वास्तव में बहुत बड़ी जीवन की उपलब्धि है। धाम आने से क्या होता है, धाम आने से एक चीज होती है कि हमारी जो मलिन मड़ी कॉन्शियसनेस है, मलिन जो चेतना है वो शुद्ध हो जाती है, और दूसरा हमें भगवान के पास वापस जाने की जो लालसा है वो हमारे हृदय में बढ़ती है। दिल्ली में रह रहे के विदेश जाने की लालसा बढ़ती है कि नहीं? विदेशों में जाना है, यहाँ जाना है, वहां जाना है, ये करना है, वो करना है। यहाँ आकर कैसे महसूस होता है? कृष्ण के पास जाना है मुझे। कहाँ जाना है? कृष्ण के पास। इसलिए धाम में आते रहना चाहिए, भक्तों की संगति में आना चाहिए। इसलिए भक्त विनोद ठाकुर कहते हैं कि जहां जहां चैतन्य महाप्रभु ने भ्रमण किया है उन उन स्थानों में मैं जाना चाहता हूं, लेकिन कैसे? प्रणय भगत संगे। हाँ, कि भक्तों के संगति में मैं उन उन स्थानों में जाना चाहता हूं जहां भगवान ने अनेक प्रकार की जो लीलाएं हैं वो प्रकट की हैं। तो इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है वृंदावन आना। हाँ, लेकिन अकेले नहीं आना, हम भक्तों के संगति में आना, तभी वास्तव में हम उस वृंदावन की चेतना को अनुभव कर सकते हैं। क्योंकि वृंदावन इतना प्रिय है कृष्ण को कि कृष्ण रो पड़ते हैं वृंदावन के बारे में कुछ उलट सुलट कुछ कोई बोलता है। अब देखो प्रयाग नाम सुना है, तीर्थराज प्रयाग या प्रयागराज, तीन बार प्रयागराज को राजा बना दिया। क्या बना दिया उसको? तीर्थ है, त्रिवेणी तीर्थ है वो प्रयाग, लेकिन सारे ब्रह्मांड के तीर्थों का उसको राजा घोषित कर दिया। और जैसे को राजा घोषित किया, हर व्यक्ति के पास जब धन सौंदर्य और नॉलेज ये सब चीजें आती हैं तो थोड़ा गर्व भी आ जाता है, घमंड भी आ जाता है। तो इसको राजा का पद दिया तो इसके पास थोड़ा घमंड आ गया। तो नारद मुनि एक दिन उसके पास जाते, प्रयाग के पास, कहते प्रयागराज तुम तो राजा हो, सारे तीर्थ आते तो मेरे दंडवत प्रणाम करने के लिए। तो प्रयाग कहता कि हाँ, सब तीर्थ अभी मेरे पास आते, रोज सुबह होते ही सारे दंडवत प्रणाम करने के लिए मुझे आते हैं और चले जाते हैं। तो नारद ने सोचा, देखा इसका अहंकार बहुत बढ़ गया है। कृष्ण को, कृष्ण सारी चीजें भक्त की सहन कर सकते हैं, क्योंकि कृष्ण को एक चीज भक्त की सहन नहीं होती, और वो क्या है? घमंड। हाँ, इसलिए गोपी गीत में वो शब्द आता है, गोपियां कहती कि कृष्ण आप तो अपने भक्तों के अंदर जो घमंड या गर्व की भावना आती है उसको चूर टुकड़े टुकड़े कर देते हो। हाँ, तो वैसे ही इसके अंदर भी घमंड आ गया। और उस समय नारद कहती कि अच्छा मुझे बताओ, ये वृंदावन आता है तुम्हें प्रणाम करने के लिए? इसने लगा अच्छा, अरे सारे आते प्रणाम करने, लेकिन वो वृंदावन आता है मुझे प्रणाम करने के लिए। उसको लगा सही नहीं, जैसे कई बार सोचो प्रसाद सर हो रहा है, उसमें 10 प्रकार के आइटम है, हाँ व्यंजन है, सब आपको दिया, किसी ने थोड़ा सा स्वीट आपको मिस कर दिया, आप जो सर मिला है उसमें संतुष्ट नहीं होगे, आप परेशान किसने अनुभव करोगे? एक क्यों नहीं मिला? अभी उसको हजारों तीर्थ प्रणाम कर रहे हैं, एक नहीं आ रहा है, उसमें प्रॉब्लम है। ऐसे हमारे जीवन में दुख ऐसे होता है, हाँ व्यक्ति कोई सुखी नहीं है। तो वैसे ही ये उसने कहा कि मुझे वृंदावन आता नहीं कभी प्रणाम करने के लिए। तो उन्होंने कहा जाके पूछो, तो कहते मैं कृष्ण को जाके पूछता हूं। तो नारद कहते पूछो पूछो। तो प्रयागराज यहाँ आए, प्रयाग तीर्थ वृंदावन में आया कृष्ण के पास, और कृष्ण को देखते ही कहा, हे कृष्ण आपने तो मुझे पूरे तीर्थों का राजा बना दिया, लेकिन ये जो वृंदावन है आपका मुझे प्रणाम करने के लिए नहीं आता। तो भगवान ये सुनते ही क्या हो गए, कृष्ण की आंखों से आंसू टपक पड़े। भगवान कहते अरे प्रयाग, तुम्हें मैंने तीर्थों का राजा बनाया, मेरे घर का राजा नहीं बनाया। ऐसे भगवान ने बोला उनको, वैसे वो अचंभित हो गया। तो भगवान को इतना प्रिय है, क्यों प्रिय है वृंदावन? क्योंकि उसमें कौन निवास करते हैं? भक्त निवास करते हैं। इसलिए भक्त भगवान का प्राण है, इसलिए इस वृंदावन भगवान वृंदावन से इतना प्रीति रखते हैं, क्योंकि वहां जो भक्त हैं वह निवास करते हैं और उनसे भगवान अत्यधिक प्रेम करते हैं। क्योंकि वृंदावन के जो निवासी हैं, भगवान के प्रति उनके हृदय में सेवा की बहुत बड़ी भावना है। तो ऐसे जो वृंदावन है, जिसकी महिमा कितने भी बोलो, कितने भी शास्त्रों में आप पढ़ो, तो उसका कोई अंत नहीं है। लेकिन ऐसा वृंदावन जो भगवान अपने साथ लेके आए और फिर संसार से जब अप्रकट हो गए, तो भगवान ये जो वृंदावन का जो ऐश्वर्य है वो भी एक प्रकार से लुप्त हो गया, हमारे दृष्टि से ओझल हो गया। तो लेकिन जैसे ही कलयुग आया, भगवान द्वापर युग के अंत में यहाँ आते हैं, शास्त्रों में वर्णन आता है, अपने सारे भक्तों को लेके चले जाते हैं, सारे भक्तों को लेके चले जाते हैं यहां से, और फिर ये जो स्थान है बिल्कुल निर्जन वन हो गया था, यहाँ कोई और ऐसी चीज नहीं थी जहां भगवान का अस्तित्व, शायद कोई कीड़ा यहाँ,
हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो कोई भी ऐसा स्थान महसूस नहीं हो रहा था कि जिससे पता चले कि यहाँ कृष्ण निवास करते हैं। हाँ, तो फिर बाद में यहाँ केवल तीन ही चीजें दिखाई दे रही थी, एक था यमुना, दूसरा था गोवर्धन और तीसरा था ब्रज की जो रज है। तीन ही चीजें थी जिनका अस्तित्व था। तो जब चैतन्य महाप्रभु प्रकट हो गए, वही कृष्ण 500 साल पूर्व, तो फिर चैतन्य महाप्रभु ने ये देखा कि जो ब्रज है अभी अप्रकट हो गया है, तो चैतन्य महाप्रभु ने अपने भक्तों को भेजा यहाँ ब्रज को उजागर करने के लिए। और उससे पहले ही जब द्वारका से भगवान अप्रकट हुए थे, तो उस समय केवल कुछ रानियों को लेकर,
क्या है
ओ अच्छा, तो कुछ रानियों को लेकर जो अर्जुन है वो यहाँ आते हैं और यहाँ आकर
हटा सकते हैं।
तो अर्जुन जब आए थे उनको लेकर यहाँ, तो उनके साथ भगवान के जो प्रपौत्र हैं, जिनका नाम क्या था? वज्रनाम। तो पांडवों के एक वंशज थे जिनका नाम था परीक्षित महाराज, और यहाँ यदुओं के वंशज थे जिनका नाम क्या था? वज्रनाम। तो जब भगवान अप्रकट हो गए तो यहाँ वज्रनाम को लाया गया, और युधिष्ठिर महाराज को पता चला कि भगवान अभी जगत में नहीं है, तो उन्होंने इस संसार का त्याग किया और वज्रनाथ को मथुरा का राजा बनाया और परीक्षित महाराज को हस्तिनापुर या पूरे विश्व का राजा बनाया। लेकिन जो वज्रनाथ को राजा बनाया ब्रज का, तो वज्रनाथ ने कहा मैं तो राजा हूं लेकिन यह प्रजा कोई नहीं है, कोई नहीं था ब्रज में, सारा जंगल ही जंगल था। तो उस समय युधिष्ठिर महाराज ने कुछ हस्तिनापुर से ब्राह्मण आदि सबको लाकर यहाँ कई सारे गांव और स्थान बसाए, और फिर वज्रनाथ ने सोचा कि ये भगवान की लीला स्थली है, लेकिन कोई भी ऐसा स्थान यहाँ नहीं है जिससे पता चल सकता है कि ये वृंदावन है। तो उनके जो मुनि है शांडिल्य ऋषि, वो वज्रनाथ को कहते हैं कि आप क्या करो, सारे लीला स्थलियों की पुनर्स्थापना करो। तो वर्णन आता है कि वज्रनाथ कृष्ण के पुत्र थे प्रद्युम्न, उनके अनिरुद्ध, और उनके कौन थे फिर? वज्रनाथ। तो ऐसे वज्रनाथ ने वृक्षों के नीचे बैठकर भगवान का स्मरण आदि किया, और भगवान ने और श्रीमती राधा रानी ने ऐसी कृपा की कि उनको सारे लीला स्थलिया अपने आप स्फुरित हो गई,
कि भगवान ने यहाँ इस प्रकार की लीलाएं की है, यहाँ ये कुंड है, यहाँ वो विशेष विग्रह थे, तो ऐसे सारे लीला स्थलियों को उन्होंने सर्वप्रथम ब्रज में खोजा और 18 विग्रहों की स्थापना की। कितने विग्रहों की? 18, और उसी में से 3 विग्रह सर्व प्रमुख है, गोविंद, गोपीनाथ, मदन मोहन और एक वृंदा देवी, जिनका काम्यवन में विशेष मंदिर है। तो इन विग्रहों की उन्होंने स्थापना की। जब इन विग्रहों को उन्होंने बनाया तो उन्होंने क्या पाया कि उस समय एक ही ऐसी स्त्री थी उत्तरा, जिन्होंने कृष्ण को साक्षात देखा था। जैसे इस विग्रहों को देखा तो उत्तरा ने कहा कि ये जो मदन मोहन है ना, इनके चरण कृष्ण के समान है। जो गोविंद है उनका ये जो भाग है छाती और भुजाएं वगैरह, ये कृष्ण के समान है। और जो गोपीनाथ है उनका फेस किसके समान है? कृष्ण के समान है। तो इसलिए तीनों विग्रह बहुत प्रमुख है। इसलिए कृष्णदास कविराज चैतन्य चरितामृत में लिखते हैं कि गौड़िया भक्तों के जो प्राण है वो कौन है? ये तीनों विग्रह गौड़िया भक्तों के प्राण है और बहुत ही महत्वपूर्ण है। तो ऐसे विग्रहों की उन्होंने स्थापना की, कई सारे मंदिर बनवाए, बहुत सारे कुंड खोदे, लेकिन कालांतर में वो भी सब क्या हो गया? लुप्त तो हो गया। 500 साल पहले चैतन्य महाप्रभु आए तो कुछ नहीं था, जंगल, कोई विग्रह नहीं, मंदिर नहीं, कुछ ऐसा स्थान नहीं। तो चैतन्य महाप्रभु ने सर्वप्रथम अपने भक्तों को भेजा और सबसे पहला डिवोटी यहाँ आया था चैतन्य महाप्रभु का, जिनका नाम था लोकनाथ गोस्वामी। क्या नाम था? तो ये लोकनाथ गोस्वामी का समाधि है जिसके चरण कमलों में आप सब बैठे हैं। तो ये लोकनाथ गोस्वामी महाप्रभु के समकालीन थे, युवक थे, पढ़ते थे उनके साथ। तो जब इन्होंने इनको महाप्रभु से इतना आकर्षण था कि वो एक दिन अकेले पुत्र थे, वो चैतन्य महाप्रभु के लिए सब अपने माता पिता सबको छोड़कर रात्रि में भाग के नवद्वीप आए चैतन्य महाप्रभु के पास और कहा कि मैं तो आपके साथ ही निवास करना चाहता हूँ। तो चैतन्य महाप्रभु तो खुश हो गए, उन्होंने कहा कि मैं आपके सन में ही कीर्तन आदि करना चाहता हूँ, रहना चाहता हूँ। तो महाप्रभु ने उस दिन उनको रखा, लेकिन दूसरे दिन चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि तुम मुझसे प्रेम करते हो, मेरी सेवा करना चाहते हो, तो मेरी सबसे बड़ी सेवा है कि तुम अभी के अभी कहां चले जाओ? वृंदावन चले जाओ। अभी ये तो ये सुन के मूर्छित हो गए। वो कहते हैं कि जिनके लिए मैंने सब कुछ छोड़ा वही व्यक्ति मुझे क्या करता है, अपने से दूर भेज रहा है। तो उनकी सेवा करना उस त्याग में सर्वश्रेष्ठ है। तो फिर ऐसे लोकनाथ गोस्वामी निकल पड़े महाप्रभु की आज्ञा से, उन्होंने सोचा नहीं दूसरा, तो अकेले निकल पड़े। तो उनका एक मित्र था जिनका नाम था भूगर्भ गोस्वामी, राधा दामोदर मंदिर जाओगे आप शाम को तो वहां उनका समाधि है। तो उन्होंने कहा मैं भी जाना चाहता हूं। तो ये पहले दो डिवोटीज हैं जो वृंदावन आए और उन्होंने लीला स्थलिया खोजना शुरू की। तो ये जो मंदिर है इनमें लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह है। क्या नाम है उनका? आपने पढ़ा होगा ना वहां, विनोदीलाल गोकुलानंद विश्वनाथ चक्रवर्ती ठाकुर के विग्रह है। तो राधा विनोदीलाल ये लोकनाथ गोस्वामी के विग्रह है। तो ये जब लोकनाथ गोस्वामी वृंदावन आए तो ये भ्रमण करने लगे कई स्थानों में। तो एक स्थान में गए जहां किशोरी कुंड था, अरे वृक्ष के नीचे बैठे उनके हृदय में इस भावना आई कि मैं तो भगवान की सेवा करना चाहता हूं उनके विग्रह के रूप में, यदि मुझे विग्रह प्राप्त हो जाते तो कितना आनंददायी होता, कितना अच्छा होता। तो ये सोच ही रहे थे तो भगवान एक ब्राह्मण के रूप में आए। उस कुंड में एक छोटे से कृष्णा थे, इतने से विनोदीलाल इतने छोटे हैं विग्रह है, वो लाके इनको दिए और कहा कि ये तो आप सेवा कीजिए, मैं तो वृद्ध हो गया हूं। तो उस विग्रह को लेकर ये आनंदित हो गए और उनकी सेवा करने लगे लोकनाथ गोस्वामी। अभी उनके पास सेवा करने के लिए कुछ नहीं था, कुटिया भी नहीं थी रहने के लिए। वो क्या करते थे, गले में जैसे बिड़ बैग लटकाते वैसे कपड़ा बांध दिया, वही उस डेटिस का टेम्पल था उनके गले में, उसमें बिठा देते थे, जहां चले वहां विग्रह को लेके चलते थे। और वो विग्रह ऐसे अद्भुत थे विनोदीलाल कि वो दिशा दिखाते थे लोकनाथ देखो यहां मैंने वो लीला की है, यहां मैंने वो कार्य किया है। तो ऐसे कितनी सारे लीला स्थलिया लोकनाथ गोस्वामी ने ढूंढ निकाली अपने विग्रह विनोदी लाल की सहायता से। और ऐसे विनोदी लाल की इतनी सेवा की कि जब बारिश होती थी बहुत अधिक तो वृक्ष में एक एक क्या कहते हैं उसको खोल करते हैं हम छेद बनाकर हम उसमें रखते थे विग्रह को, लेकिन पूरा खुद दिन रात किसमें खड़े हो जाते थे बारिश में खड़े होते थे। ऐसी विग्रह सेवा की उनकी भावना थी। क्यों? क्योंकि प्रतिमान है तुम्हें साक्षात ब्रजेंद्र नंदन। जब आप विग्रह से डील करते हो तो कभी भी ये भावना नहीं आनी चाहिए कि ये सर्व साधारण मूर्ति या पत्थर आदि है, क्योंकि कृष्णदास कविराज कहते हैं कि ये तो प्रतिमा या मूर्ति नहीं है, साक्षात कृष्ण है। तो इस प्रकार से उन्होंने विग्रह की सेवा आदि की और ऐसे लोकनाथ गोस्वामी है। उसके बाद हम जानते हैं कि सनातन गोस्वामी रूप गोस्वामी आए और इन आचार्यों ने बाद में अलग अलग विग्रहों की स्थापना की और मंदिरों का निर्माण किया। तो सर्वप्रथम जिस मंदिर का हमने दर्शन किया तो सुबह, उस मंदिर का नाम क्या था? मदन मोहन। तो मदन मोहन की तो बहुत विस्तृत लीलाएं हैं। तो वो जो मंदिर है मदन मोहन का, वो वृंदावन का सर्वप्रथम मंदिर है जिसको हमने सुबह दर्शन किया था। वृंदावन में इससे पहले एक भी मंदिर नहीं था, जंगल ही जंगल था। और जो थोड़े बहुत साधु महात्मा जो लोग रहते थे वैरागी, वो पेड़ों के नीचे रहते थे और केवल अपना थोड़ा बहुत भजन करते थे। तो लेकिन जब चैतन्य महाप्रभु सनातन गोस्वामी को मिले और रूप गोस्वामी को, ये दोनों वास्तव में इस आंदोलन के सेनापति है। चैतन्य महाप्रभु ने कहा कि ये वृंदावन मेरा प्राण है, आप मेरे प्रिय सेवा करना चाहते हो, हे सनातन तुम वृंदावन चले जाओ और वहां जाकर क्या करो, वैष्णव सदाचार के ऊपर ग्रंथ लिखो, मंदिरों की स्थापना करो और विग्रह की स्थापना करो और भगवान की लीला स्थलियों को खोजो। ऐसे चार कार्य उनको दिए थे। तो सनातन गोस्वामी यहाँ आते हैं। सनातन गोस्वामी यहाँ आने से पूर्व वो जो मदन मोहन है, मदन मोहन का मतलब क्या है कौन बताएगा? मदन मोहन नाम क्यों पड़ा भगवान को? क्योंकि मदन, मदन का मतलब है कामदेव। अब इस जगत में सारे लोग एक ही देव से आकर्षित है। कौन से देवता से? कामदेव से। कामदेव ने सबको आकर्षित करके रखा है अपनी ओर। तो कामदेव को बड़ा गर्व है। हाँ, तो कामदेव ने सुना कृष्ण बहुत सुंदर है, हाँ, तो उनको भी मैं आकर्षित करता हूं। तो ऐसा कामदेव अपने हाथ में पांच पुष्प बाण लेके आया। तो कामदेव के पास पांच पुष्प बाण होते हैं। तो वो लेके आ गया और सोचा, नंद महाराज के भवन के बाहर वृक्ष था, उसके ऊपर बैठ गया। कहते कि अभी जब कृष्ण आएंगे ना, अपने बाण उनके ऊपर चलाऊंगा और उनको मंत्र मुग्ध कर दूंगा, आकर्षित कर दूंगा। तो कृष्ण जैसे ही बाहर ऐसे निकलते हैं नंद महाराज के भवन से, वैसे कामदेव कृष्ण के सौंदर्य को देखकर ही खुद ही क्या हो गया, मोहित हुआ। मोहित ही नहीं हुआ, पेड़ से गिरा और नीचे धड़ाम गिर गया जोर से, हाँ, मूर्छित हो गया। इतने अधिक सौंदर्यवान है। इसलिए कृष्ण का नाम क्या पड़ा? मदन मोहन। मदन सारे जगत को आकर्षित करता है, ऐसे मदन को भी जो मोहित करते हैं वो कृष्ण है, मदन मोहन। लेकिन कृष्ण से भी आगे और एक है, कौन है? राधा रानी। हाँ, तो मदन मोहन को भी जो आकर्षित करती है वो कौन है? मदन मोहन मोहिनी। हाँ, तो ऐसे मदन मोहन के जो विग्रह हैं ये वज्र नाम ने स्थापित किए थे। लेकिन कालांतर में यमुना के उसमें पेड़ों के आसपास नीचे जमीन में धस गए थे, चले गए थे। लेकिन जब पहली बार वृंदावन में अद्वैत आचार्य आए थे, अद्वैत आचार्य जानते हैं ना आप सब, श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत। तो ऐसे अद्वैत आचार्य जब आए और वो थोड़ा भ्रमण कर रहे थे, तो उस समय अद्वैत आचार्य को भगवान ने स्वप्न में कहा कि हे अद्वैत आचार्य, मैं तो यह झाड़ियों के बीच में जमीन के अंदर हूं, मुझे निकालो और मेरी सेवा शुरू करो, तो अद्वैत आचार्य ने उस विग्रह को बाहर निकाला है और उनका नाम क्या रखा था पहले, मदन गोपाल। क्या नाम था? मदन गोपाल, बाद में मदन मोहन कहलाए। तो ऐसे अद्वैत आचार्य बहुत प्रेम रखते थे उनसे। फिर अद्वैत आचार्य जाने से पहले सोचा कि मैं इनको मायापुर लेके जाता हूँ, शांतिपुर नवद्वीप। तो भगवान ने कहा मुझे ग्रह से बाहर मत लेके जाओ। हाँ, एक पादम न गच्छन्ति। कृष्ण के बारे में कहा जाता है कृष्ण वृंदावन छोड़कर बाहर नहीं जाते। तो ऐसे उन्होंने कहा, लेकिन देखो ये जो चित्रा सखी है उन्होंने मेरा एक पेंटिंग बनाया है और वो निधिवन में पड़ा है, वो उठा के लेके जाना मायापुर जाते समय। तो अद्वैत आचार्य ने जो पेंटिंग उनको मिला, जो उस चित्रा सखी ललिता विशाखा ने बनाया था, वो लेके जाते अपने साथ। और फिर जाते समय भगवान कहते हैं कि मथुरा में मेरे प्रिय भक्त हैं रामदास चौबे। कौन से भक्त हैं? रामदास चौबे, मिस्टर चौबे एंड मिसेस चौबे, उनके पास मुझे छोड़ के जाओ, वो मेरा देखभाल करेंगे, वो मेरी सेवा करेंगे। तो अद्वैत आचार्य उस विग्रह को मदन गोपाल को लेकर उनके हवाले करते हैं और वो पति पत्नी ब्राह्मण थे, उनकी सेवा करते थे। इतनी सेवा करते थे कि वो माता जी उनको कैसे ट्रीट करती थी, मेरे घर का बच्चा ही है। अब तो ऐसे सनातन गोस्वामी जब आए तो सनातन गोस्वामी उस स्थान में रहने लगे। वो ऊंचा स्थान है जिसको कहते हैं द्वादश आदित्य टीला। द्वादश आदित्य टीला में आप मंदिर के पीछे छोटा सा छोटा टेम्पल बना हुआ है, मैंने उस समय दिखाया था कि उसी के पीछे कालिया धर है। भगवान ने कालिया को मारा और जल में इतना घंटे रहे भगवान, बाहर आए तो उनको बहुत ठंड लग गई थी। इतनी ठंड लग गई कि भगवान ने सोचा अभी मुझे गर्मी चाहिए। तो भगवान वहां मदन मोहन का जो ऊंचाई का स्थान है वहां आकर कृष्ण लेट गए। मंदिर के पीछे एक स्थान है ना ऊंचा, वहां लेटे। तो उस समय सोचा गर्मी चाहिए, तो सूर्य ने सोचा मैं अभी भगवान को गर्मी चाहिए, तो एक नहीं कितने सूर्य प्रकट हो गए, द्वादश, बारह, बारह सूर्यों ने गर्मी दी। तो भगवान थोड़े से ठीक हो गए। तो इसलिए वो स्थान, वो जो टीला है वो बहुत महत्वपूर्ण है, वहां कृष्ण स्वयं लेटे हुए थे। इसलिए सनातन गोस्वामी ने वो स्थान चूज किया अपने भजन के लिए। और वो सनातन गोस्वामी वहां पीछे पेड़ के नीचे अपना जप किया करते थे, भजन करते थे। उनके हृदय में भावना आई कि कोई विग्रह हो तो उनकी मैं सेवा करता। तो रोज सनातन गोस्वामी यहाँ से गोवर्धन जाते, बहुत बड़ी परिक्रमा करते चंद्र सरोवर से लेकर पैठा ग्राम तक, और फिर वहां से मथुरा जाके मधुकरी मांगते और फिर यहाँ आते। दिन प्रतिदिन ऐसे था उनका। लेकिन एक दिन जब मथुरा में वो भिक्षा मांग रहे थे, देखा कि चौबे माता जी क्या कर रही है, वो दातुन दातुन कर रही है और वो भगवान के लिए खीर भी बना रही है। अभी खीर कभी लग जाती है नीचे तो क्या करता है व्यक्ति, चम्मच से हिलाता है। हाँ, तो वैसे दातुन करते करते उससे क्या करती थी, बीच बीच में हिलाते थे, फिर दातुन करते थे, फिर हिलाते थे। सनातन गोस्वामी का ये कैसी सेवा कर रही है, भगवान को दातुन छूटा और सब कुछ, उन्होंने कहा ये सही नहीं है। क्योंकि जितने भी विधि विधान है, नियम है, वो कौन से आचार्य ने दिए हमें, सनातन गोस्वामी ने। अभी देखो जप माला है उसमें 61 मन के, फिर वो अलग मने, फिर ये माला बिड़ब्या का कैसे कैसा होना चाहिए, ये बहुत सारे जितने भी नियम है, प्रणाम कैसे करना चाहिए, ये सब नियम मंत्र आदि किसने दिया है, सनातन गोस्वामी। लेकिन उसमें क्या भावना होनी चाहिए, मूल क्या होना चाहिए, वो कौन से आचार्य ने दिया है, रूप गोस्वामी ने। इसलिए महत्वपूर्ण है दोनों आचार्य। तो ऐसे ये तो बहुत कठोर थे, वैष्णव सदाचार का पालन नहीं हो रहा है तो डांटते थे। तो उन्होंने कहा कैसी कर रहे हो, तो वो क्लास लगाने लगे उस माता जी की वहां खड़े खड़े। तो वो तो बेचारे विनम्रता से बाबा जो बोल रहा है वो मान रहे थे, सुन रहे थे। फिर ये आ गए वापस, वापस आ गए तो वहां उन्होंने देखा था भगवान के विग्रह को, मदन गोपाल को। तो यहाँ आ गए, इनको लगा कि अरे उनके पास तो विग्रह है, उनके बच्चे भी है, उनके पास दो तीन बच्चे हैं, तो मेरे पास तो कोई है नहीं, तो मुझे वो सेवा के लिए मिल जाए तो मैं उनकी सेवा कर सकता हूँ। तो जब यहाँ आए तो भगवान उसी समय वो जो ब्राह्मण है उनके स्वप्न में भी जाते हैं और उनको कहते हैं कि अरे चौबे तुम्हारे पास इतने बच्चे हैं, उनकी सेवा तो कर ही रहे हो, लेकिन मुझे किसके पास भेजो? सनातन गोस्वामी के पास भेजो। तो वो सनातन गोस्वामी के पास वो बिगड़ा आते हैं और सनातन गोस्वामी उनको उस वृक्ष के नीचे बिठाकर उनकी सेवा करते हैं। तो वो सब हम पास टाइम सुने हैं, सेवा करने लगते हैं। उनके पास कुछ नहीं था, जो भी आटा लाते थे उसको यमुना के जल में भिगाकर उसको थोड़ा आग में डालकर बाटी छोटी सी गोल करके उनको खिलाते थे। तो भगवान प्रेम से खा रहे थे, कब तक प्रेम से खाएंगे? भगवान ने कहा सनातन तुम बाबा जी हो, तुम्हें कुछ नमक हो नहीं हो कुछ चलता नहीं, लेकिन मुझे क्या करो, कम से कम इसमें क्या डाल के खिलाओ, नमक दो। तो सनातन गोस्वामी को गुस्सा आया, अरे आज नमक मांग रहे हो कल घी मांग रहे हो, कहां से लाओ? मुझे भजन करना है कि तुम्हारे लिए ये सब ढूंढते रहना है? हाँ, तो भगवान चुप हो गए। मदन मोहन भाई ने कहा खुद की व्यवस्था खुद करनी चाहिए, दूसरों को तकलीफ नहीं देनी है। तो भगवान तो प्रेम से डांटे तो अरेंज करते हैं। तो उसी समय कोई जहाज वहां पीछे से गुजर रहा था, तो भगवान ने कहा इससे कुछ करवाता हूं सेवा। जहाज को आप भी कर दिया, धसा दिया पानी में। वो कहते हैं कि मुल्तान से कोई व्यापारी जा रहा था, कुछ ग्रंथों में वर्णन आता है कृष्णदास कपूर, किसमें कहते रामदास कपूर, मैं दिखाना भूल गया। वहां विशेष वह है, उनका विग्रह है जिसने वो मंदिर बनाया है। तो ऐसे वो व्यक्ति जा रहा था बिजनेस के लिए, तो उसका नाव धस गई पानी में, तो आ गया बाहर और उसने कहा कि कोई है जो मेरी सहायता कर सकता है? किसी गौर वाले ने कहा उस टेले के ऊपर एक बाबा जी है, उनके पास जाओ, चमत्कार कुछ कर सकते हैं। तो वो आया व्यापारी सनातन गोस्वामी के पास उस ऊंचाई पर, कहा कि आप मेरी सहायता कीजिए, कृपा कीजिए। तो सनातन गोस्वामी कहते मैं कुछ नहीं कर सकता, करता धरता करने वाला कौन है? पाप पेड़ के नीचे बंसी बजा रहा है, उनके पास जाओ। तो वो जाते हैं और भगवान को प्रार्थना करते हैं। प्रार्थना करते ही नाव ऊपर आती है और वो कहता है कि जो भी धन मैं अर्जन करूंगा इस बिजनेस से, इस टूर से, बिजनेस टूर से, वो किसकी सेवा में लगाऊंगा? इधर भगवान की सेवा में। और वो आगरा से व्यापार करके आते तो पूरा नाव भरा हुआ था धन से, आके सनातन गोस्वामी के चरणों में डालता है कि मैं सेवा करना चाहता हूँ। सनातन गोस्वामी कहते हैं मुझे तो धन की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि सनातन गोस्वामी कौन थे आप पहले? बंगाल के प्राइम मिनिस्टर थे, धन की कोई कमी नहीं थी। लेकिन ऐसे गोस्वामी ने क्या किया? तेत्वा तूर्णम अशेष मंडलपति, कहते कि इन गोस्वामियों ने ये भौतिक उपभोग ऐसे तृण के समान त्याग दिया और वो ब्रज में आ गए भगवान की सेवा करने के लिए। तो उन्होंने कहा मेरे लिए तो कुछ मत करो, करना है तो किसके लिए करो? मदन मोहन के लिए मंदिर बना लो। तो अब देखो वो वृंदावन का सबसे पहला मंदिर मदन मोहन की सेवा में उन्होंने बनाया है, इतना विशेष और इतना सुंदर मंदिर जो आज भी खड़ा है। तो ऐसे उस मंदिर की स्थापना करते हैं और जहां भगवान का अभिषेक होता है अंदर और चरणामृत जहां से निकलता है ना बाहर, वहां एक छोटा सा स्टैचू है ऐसा नीचे, और वो किसका है? उस डोनर का है। वो कंस्ट्रक्शन के समय जानबूझ के बनाया था। भगवान का जो भी जल आदि है वो कहां गिरे? उनके सर में, या वो स्वीकार करे उनकी कृपा के रूप में। तो ऐसे सनातन गोस्वामी वहां भजन करते थे, लेकिन जल के लिए उनको दूर दूर जाना पड़ता था, सारा नमकीन जल है। तो भगवान से देखा नहीं गया कि इतना मेरी सेवा में लगा हुआ है, लेकिन पानी पीने के लिए उसको कहां दूर जाना पड़ता है। तो भगवान ने क्या किया, अपने बांसुरी से ही वहां एक कुआं बना दिया। हाँ, जब कुआं पानी पिए होंगे वहां वो मधुर जल वहां प्राप्त होता है। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के विशेष विग्रह है। और कालांतर में हम जानते हैं कि औरंगजेब ने जब देखा वृंदावन का ऐश्वर्य, और विशेष रूप से कौन सा ऐश्वर्य देखा वृंदावन का? गोविंद देव का मंदिर, सबसे बड़ा 7 मंजिल का गोविंद देव का मंदिर था, और उसके ऊपर एक घी की बहुत बड़ी मशाल जलती थी, बहुत बड़ा प्रकाश होता था। तो एक दिन औरंगजेब अपने महल आगरा में खड़ा होकर दूर से देख रहा था कि प्रकाश कहां से निकल रहा है। किसने कहा वो हिंदुओं का मंदिर है जहां से इतना मशाल जल रही प्रकाश? उससे रहा नहीं गया, ईर्ष्या से वो जल रहा था। दूसरे दिन आपने हजारों सैनिकों को भेजा और उन्होंने वृंदावन के सारे मंदिर उद्ध्वस्त करना शुरू कर दिए। सबसे पहले गोविंद देव मंदिर उद्ध्वस्त किया, 7 फ्लोर थे, अभी तो 3 ही फ्लोर है। और फिर बाद में मदन मोहन मंदिर। तो जैसे पुजारियों को पता चला तो मूल जो भी मूल विग्रह है वृंदावन का केवल राधा रमन को छोड़कर बाकी सारे कहां चले गए? जयपुर। इसलिए जयपुर को कहते हैं वृत्त वृंदावन। तो सारे विग्रह मदन मोहन के विग्रह चले गए, राधा दामोदर भी चले गए वहां, और विनोद लाल भी उधर ही है, राधा माधव उधर है, हाँ गोविंद देव भी, प्रमुख प्रमुख सारे विग्रह वृंदावन चले गए हैं। तो ऐसे ये मदन मोहन सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं। और राजा जब जयपुर में इस विग्रह को भेजा तो राजा तीन विग्रह थे जयपुर में, मदन मोहन, गोविंद देव और गोपीनाथ। तो जो राजा था उसने अपने पर्सनल सेवा के लिए मदन मोहन को रखा था अपने घर में, और गार्डन में सामने रखा था गोविंद देव को, और जनरल लोगों के लिए गोपीनाथ मार्केट में ऐसे प्लेस में रखा था सेवा के लिए। तो घर में वो मदन मोहन की पूजा करते थे, और उस मदन मोहन के प्रति उनकी जो बेटी थी उसको गहरा आकर्षण था। जब उस बेटी का विवाह किया तो राजा ने कहा क्या दूं तुम्हें? उस बेटी ने क्या मांगा? मदन मोहन चाहिए। राजा के भी प्राण मदन मोहन में थे। राजा ने सोचा कैसे दूं, तो बेटी को कहा कि कल सुबह मैं मदन मोहन को बाहर रखूंगा और कई सारे कृष्णा रखूंगा सेम। आपको क्या करना है, आपकी आंखों की पट्टी लगाई जाएगी, बांधी जाएंगी आंखें, और आपको चूज करना है, पकड़ना है। तो रात भर ये जो राजकुमारी है वो रोती रही, भगवान ने कहा चिंता मत करो, तुम्हारा अंदर मुझे ले जाने की इतनी लालसा है ना, कल मैं जरूर आपके साथ ही जाऊंगा। जब तुम्हारे आंखों में पट्टी डालेंगे बांधेंगे और आप जब आओगी अलग अलग विग्रहों का ऐसे चेक करोगे तो देखो मैं जो आप आते ही मैं आपकी उंगली ऐसे खड़ा कर दूंगा, जिसकी भी उंगली खड़ी है तो वो कौन है? मैं हूं। तो दूसरे दिन वैसे ही हुआ, वो राजकुमारी चेक करने गई, बहुत सारे विग्रह रखे थे, लोग वहां खड़े थे। तो मदन मोहन को लेकर अपने साथ चली जाती है और वो स्थान कौन सा है? करौली, जहां मदन मोहन आज निवास करते हैं। तो ऐसे सनातन गोस्वामी के विग्रह हैं, और इस सनातन गोस्वामी के जो विग्रह मदन मोहन उनको कहते हैं सबंध देव, सबंध आदि देव। हम जिनके साथ हम क्या करते हैं, अपना भक्ति का जो संबंध है वो स्थापित करते हैं। हाँ, और फिर दूसरे विग्रह हम सबक काफी हो गया है, आपके लंच का समय हो गया है ना, तो बस 5 मिनट में मैं राधा रमन का वर्णन करता हूँ। तो राधा रमन का दर्शन किया आपने, आप बताइए क्यों नहीं राधा रमन भाग गए वृंदावन से? क्योंकि उनको छुपाना बड़ा आसान है, इतने छोटे से तो है, वो कहां भी छुपाए जाए, बाकी वगैरह बड़े 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 हैं। हाँ, तो ऐसे राधा रमन है वो विशेष विग्रह है। आपको पूर्ण कृष्ण को जैसे उत्तरा ने कहा किसी के चरण, किसी की भुजाएं या छाती और किसी के मुख, लेकिन इन तीनों का मिलाप किस में है? राधा रमन में है। पूर्ण कृष्ण यदि देखते हैं हम तो राधा रमन के विग्रह को कहा जाता है। तो ये गोपाल भट्ट गोस्वामी के विग्रह है, और गोपाल भट्ट गोस्वामी दक्षिण भारत के एक महान एक आचार्य है या भक्त है, जो चैतन्य महाप्रभु के आज्ञा से यहाँ आकर निवास करने लगे। और निवास किया तो चैतन्य महाप्रभु ने उनको कहा था कि आप उत्तर उधर की भी यात्रा करो गंडकी की। तो एक दिन ये जाते हैं गंडकी नदी जो नेपाल में है यात्रा करने के लिए गोपाल भट्ट गोस्वामी। तो वहां जब वो गए तो वहां जब स्नान कर रहे थे तो उनके हाथ में कमंडलों में 11 शिलाएं आती थी। हाँ, तो आते ही फिर वो कहते हैं इतनी सारी शिलाएं फिर छोड़ देते थे, लेकिन उन्होंने सोचा शायद भगवान की योजना है, फिर से उन्होंने अपना कमंडलू लाला जल लेने के लिए तो कई सारी शिलाएं आई, तो उन शिलाओं को लेकर वो यहाँ आते हैं। और उसमें एक विशेष शिला थी, दामोदर शिला, जो कृष्ण का विशेष स्वरूप है। तो ऐसे उस शिला को लेकर आते हैं, दामोदर शिला को, और यहाँ अभी भी वो स्थान है जहां राधा रमन का प्रकट हुए थे वृक्ष के नीचे। तो वो क्या करते थे, ऐसे कहा जाता है कि यहां तक यमुना बहती थी, उसका जल यहां तक था, और राधा रमन के उस वृक्ष के नीचे वहां गोपाल भट्ट गोस्वामी बैठकर उनकी शिला की पूजा करते थे, और रात्रि में शिला को टांग के रखते थे टहनी को, और नीचे सो जाते थे। तो एक दिन वृंदावन में उस समय एक व्यापारी आ गया, नरसिम्हा चतुर्दशी थी कि सबको दान देने लगा, वस्त्र देने लगा, विग्रह के आभूषण देने लगा। तो उनको लगा कि अरे मेरे तो गोल मटल शालीग्राम है, उन पर आप कपड़े पहना सकते हो ना कुछ कर सकते हो, मेरे पास ऐसे विग्रह होते तो मैं उनका आभूषण पहनाता, उनको वस्त्र पहनाता। तो ये डिजायर भगवान ने जब उनके हृदय में देखी, तो रात्रि में जब ये सो रहे थे तो सुबह उठे और अपना भगवान को जो बांध के रखा था ऊपर खोलने लगे। खोलते उन्होंने वैसे कहते कि हाथ डाला, हाथ डालते तो देखा कि अरे वो गोल नहीं है, अभी शिला उसमें क्या आ गया है, पूरा रूप आ गया है। हाँ, तो जैसे उन्होंने उतारा तो देखा कि साक्षात वो शिला, दामोदर शिला ने त्रिभंग ललित रूप धारण किया है। पीछे की ओर बिल्कुल नॉर्मल है और आगे उनका सारे भुजाएं हैं, मुख कमल आदि हैं। तो इतने आनंदित हो गए गोपाल भट्ट गोस्वामी। फिर सनातन गोस्वामी को बुलाया, रूप गोस्वामी को बुलाया, ये तीनों गोस्वामी आ गए और उन्होंने कहा ये विग्रह प्रकट हो गए हैं। हाँ, तो ये रूप सनातन ने उनका नामकरण किया, राधा रमन ये जो नाम है उनको उन्होंने प्रदान किया। तो ऐसे राधा रमन विशेष विशेष विग्रह है जिनकी आराधना गोपाल भट्ट गोस्वामी करते थे। तो इस कृष्ण कथा का कोई अंत नहीं है और यहाँ ये गोस्वामियों की देन है। वृंदावन किसकी देन है, हमें गोस्वामियों की, और उससे भी हमारे लिए महत्वपूर्ण श्रील प्रभुपाद है। वास्तव में श्रील प्रभुपाद ने हमें वृंदावन प्रदान किया है, हमें नहीं पूरे विश्व को। तो श्रील प्रभुपाद ऐसे विशेष आचार्य हैं जिन्होंने अपने हृदय में वृंदावन को लिया और सारे जगत में क्या किया, उन्होंने उसका प्रचार किया। तो यहाँ वृंदावन में बारंबार आते रहना चाहिए, दर्शन करना चाहिए और अधिक से अधिक क्या करना चाहिए, हरे कृष्णा 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 जोर से। आप सबको भूख लगी है शायद, जोर से बोलिए हरे कृष्णा हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। वृंदावन धाम के श्री राधा रमन के मदन मोहन देव के राधा गोविंद देव के राधा गोपीनाथ के राधा गोकुलानंद के श्री प्रभुपाद के हृदय गौतम आनंद हरे कृष्ण
हम लोग प्रशांत के लिए अभी पास में ही है, वहां जा रहे हैं।